ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अगले आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में युवा की समस्याओं को संबोधित करने की प्रधानमंत्री ओली ने जताई प्रतिबद्धता। 40% अनुमानित टीबी के मरीज नहीं आते इलाज के दायरे में। राष्ट्रीय क्षय रोग केंद्र ने टीबी के मरीजों की खोज को बताया चुनौतीपूर्ण। बांके के बेतहनी में टैंकर की टक्कर से एक ही परिवार के दो बच्चों की हुई मौत। और गजा पर इसराइल के हमले में 41 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि देश में दीर्घकालीन शांति, सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज निर्माण से ही विकास और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नेपाल सरकार के आर्थिक वर्ष 2081 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। मौके पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति के समक्ष नेपाल सरकार के आर्थिक वर्ष 2080-81 का प्रतिवेदन पेश किया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि कृषि के आधुनिकीकरण से ही उत्पादन और उत्पादकत्व में बढ़ोतरी की जा सकती है। राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश विकास की गति में आगे बढ़ चुकी है और अब उद्यमशीलता से रोजगार सृजित होंगे। युवाओं से अपने क्षेत्र में केंद्रित होकर काम करने का आग्रह करते हुए उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि सरकार आगामी नीति तथा कार्यक्रम में युवा की समस्याओं को संबोधित करेगी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि नेपाल में राजतंत्र के लौटने की संभावना नहीं है। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति के प्रशिक्षण विभाग द्वारा आज ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभापति देउवा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से चल रही राजावादियों की गतिविधियों की ओर हमारा ध्यान गया है और ये कहते हुए उन्होंने गणतंत्र के पक्ष में एकजुट होकर लगने का नेता कार्यकर्ताओं को निर्देश किया। सभापति देउवा ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को सुझाव भी दिया कि अगर उन्हें राजनीति ही करनी है तो पार्टी बनाए। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विभिन्न 5 विधेयकों पर विचार करने के प्रस्तावों को स्वीकृत किया। उन विधेयकों में प्रतिस्थापन विधेयक के रूप में आए सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला विधेयक 2081, सहकारी संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला विधेयक 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन विधेयक 2081, निजीकरण प्रथम संशोधन विधेयक 2081 और आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं निवेश अभिवृद्धि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला विधेयक 2081 शामिल हैं। विधेयकों पर विमर्श के दौरान उठाए गए सवालों के जवाब अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पोटेल और संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा कुरुंग ने दिए। इससे पूर्व राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, जिसमें सिराहा में महायज्ञ के नाम पर दलित का घर तोड़ने वाले पर कानूनी कार्रवाई करने जैसे मुद्दे शामिल थे। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक चैत 13 गते बुधवार के लिए बुलाई गई है। बांके के बेतहनी में टैंकर की टक्कर से एलकेजी में पढ़ने वाले दो बच्चों की मौत हो गई। डुडुआ गांवपालिका वार्ड नंबर 2 बेतहनी चौक पर स्कूल से घर की ओर जाते हुए दो भाइयों विशाल कुमार गोडिया और शिव कुमार गोडिया को पानी के टैंकर ने टक्कर दे दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बेतहनी चौक पर चक्का जाम किया और टैंकर में आगजनी की। नेपाल में 40% टीबी के मरीजों के अब भी समाज में छिपकर बैठे रहने के कारण वे इलाज के दायरे में नहीं आ सके हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय क्षय रोग केंद्र ने साझा की है। विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या में आज राष्ट्रीय क्षय रोग केंद्र द्वारा भक्तपुर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र के निदेशक डॉ श्रीराम तिवारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दवा करने से ठीक हो सकने वाले टीबी के अनुमानित 40% मरीज इलाज के दायरे में नहीं आते, इसलिए उनकी खोज करना चुनौतीपूर्ण है। ये बताते हुए कि नेपाल में वार्षिक 68,000 लोग टीबी के मरीज होते हैं, उन्होंने कहा कि इलाज के दायरे में न आने वाले मरीजों की खोज के लिए केंद्र विभिन्न कार्यक्रम संचालित करता आ रहा है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर पढाई कस्तो चल्दैछ
सबै राम्रै चल्दैछ अनि त्यहाँ के छ बुवा
यहाँ पनि सबै राम्रो छ ल तेरो आमासँग कुरा गर
पर्दैन पर्दैन किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
अब बाकी समाचार प्रतिनिधि सभा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति में विवाह के लिए निर्धारित उम्र का दायरा 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कायम करने का सुझाव सांसदों ने दिया है समिति की आज की बैठक में सांसदों नगीना यादव रंजू कुमारी झा पूर्ण बहादुर कार्ती लगायत ने विवाह के लिए निर्धारित उम्र के प्रावधान को संशोधित करने का सुझाव दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने सरलाही की लालबंदी नगरपालिका की 19 अवैध स्वास्थ्य संस्थाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं उनके नेतृत्व में एक टोली निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का अनुगमन करने के लिए कल शाम को वहां पहुंची थी कर्णाली प्रदेश में आने वाले सब्जी और फल फूल में विषादे की मात्रा जांच करने के लिए भेरीगंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 हर्रे में स्थापित विषादी प्रयोगशाला प्रयोगविहीन पड़ी हुई है कर्णाली प्रदेश सरकार ने 6 साल पहले 70 लाख रुपए की लागत में विषादी प्रयोगशाला भवन का निर्माण करवाया था लेकिन कर्मचारी और प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण खरीद करने के लिए पर्याप्त बजट न होने के कारण संचालन में नहीं आ सकी है ये जानकारी प्रयोगशाला के प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्र बहादुर रोकाया ने दी इसी बीच कर्णाली प्रदेश की भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय ने बताया है कि प्रयोगशाला संचालन के लिए आवश्यक रकमांतरण की तैयारी हो रही है अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार इसराइल के हवाई हमले में हमास के टॉप पॉलिटिकल लीडर सलाह अल बर्दावील और उसकी पत्नी की मौत हो गई है हमास ने आज सुबह इसकी पुष्टि की है हमला दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में हुआ गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बीते 24 घंटे में इसराइली हमले में 41 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है जबकि 61 घायल हुए हैं इसके साथ ही 17 महीने से जारी जंग में जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है वहीं घायलों का आंकड़ा 1,13,274 पहुंच गया है पिछले हफ्ते मंगलवार को इसराइल ने युद्ध विराम तोड़ते हुए गजा में दोबारा हमले शुरू किए थे इन हमलों में लगभग 600 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है इसराइली सेना ने कहा कि वो गजा सिटी के 3 इलाकों में नए हमले की योजना बना रही है और फिलिस्तीनियों को वहां से निकलने की चेतावनी दी गई है इसराइल ने हमास की कैद में मौजूद 59 बंधकों की रिहाई तक गजा में हमले तेज करने का आदेश दिया है इन बंधकों में से 24 जिंदा हैं इससे पहले दोनों के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम हुआ था इसमें बंधकों की रिहाई का समझौता हुआ था इसराइल ने बीती रात लेबनान में भी कई जगहों पर हवाई हमले किए इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई इसराइल ने ये हमले लेबनान से दागे गए रॉकेट के जवाब में किए पिछले 4 महीने से हिजबुल्लाह के साथ जारी युद्ध विराम के बाद इसराइल का ये पहला बड़ा हमला था हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर बताया कि उसने इसराइल पर रॉकेट नहीं दागे हैं और युद्ध विराम का पालन कर रहा है इसराइली सेना IDF ने बताया कि लेबनान बॉर्डर के पास मेटुला शहर से 6 रॉकेट दागे गए थे इनमें से 3 इसराइल में दाखिल हुए जिन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया IDF के मुताबिक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है लेकिन उसने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और दर्जनों रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया है अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर अगले आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में युवा की समस्याओं को संबोधित करने की प्रधानमंत्री ओली ने जताई प्रतिबद्धता 40% अनुमानित टीबी के मरीज नहीं आते इलाज के दायरे में राष्ट्रीय क्षयरोग केंद्र ने टीबी के मरीजों की खोज को बताया चुनौतीपूर्ण बांके के बेदहनी में टैंकर की टक्कर से एक ही परिवार के 2 बच्चों की हुई मौत और गजा पर इसराइल के हमले में 41 लोगों की हुई मौत रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार नमस्कार शुभरात्रि।